ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 14 जून 2026 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग है, अर्थात उन पर जो उसकी वचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू स्नेह और नाग को कुचलेगा, तू जवान स्नेह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय धीरड़ रहें। भजन संहिता। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वचा उन पर प्रगत करेगा। भजन संहिता। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। राज्य: यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र अहियब इसराइल पर राज्य करने लगा। राज्य: और तिशबी एलिया जो जिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहियब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व ओर मुख करके क्रेत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छुप जा। उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सैदून सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ियां बिना कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मीना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकारा। तब वो बालक पर 3 बार पिसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। भजन संहिता। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। ईश्वराय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है, मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की उपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है, कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करता है, लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं, जब तक कि मनुष्य के शाश्वत सिद्धभाव का ज्ञान वैज्ञानिक की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। परीक्षण नश्वर लोगों को एक भौतिक कर्मचारियों और एक टूटी हुई एक पर झुकना नहीं सिखाते हैं जो हृदय को छेड़ता है। हम आनंद और समृद्धि की धूप में इसे याद नहीं करते। दुख लाभकारी है, महान क्लेश के माध्यम से हम राज्य में प्रवेश करते हैं। परीक्षण परमेश्वर की देखभाल के प्रमाण है। भौतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास उनकरण नहीं करता है, लेकिन जब ये क्षय होता है तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है, जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता है। अनुभव के प्रतीक क्रामिक चरण में ईश्वरीय अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। हर समय आदमी की अच्छाई मांग, जिसमें होने की समस्या को हल करना, भलाई के प्रति समर्पण मनुष्य की ईश्वर पर निर्भरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। ना तो अभिषेक परमेश्वर के प्रति मनुष्य के दायित्वों को कम करता है, बल्कि उनसे मिलने की सर्वपरि आवश्यकता को दर्शाता है। क्रिश्चियन साइंस भगवान की पूर्णता से शून्य है, लेकिन ये उसे पूरी महिमा का वर्णन करती है। बूढ़े आदमी को उसके कामों से दूर करने के द्वारा नश्वर अमरता को पहन लेते हैं। हम नश्वर विश्वास के उठलेपन में गोता लगाकर ईश्वर की रचना की प्रकृति और गुणवत्ता को थाद नहीं दे सकते। हमें जीवन में सत्य और भावतिकता को खोजने के अपने आठक संपंदन को उलट देना चाहिए और ईश्वर के अमर विचार के लिए नश्वर से ऊपर भावतिक इंद्रियों की गवाही से ऊपर उठना होगा। ये स्पष्ट उच्च विचार भगवान जैसे मनुष्य को उसके अस्तित्व के पूर्ण केंद्र और सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित पौलुस बुराई के अवतार को इस दुनिया के देवता के रूप में संदर्भित करता है और आगे इसे बेईमानी और चालाकी के रूप में भी परिभाषित करता है। पाप असुरियों का चंद्रमा देवता था। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय की अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कश्मकश में जकड़े मानवीय घृणा आप तक नहीं पहुंच सकती। नश्वर पुरानियों को लुपट होती सीमित आकृतियों से परे देखना होगा, यदि वो चीजों का सही अर्थ प्राप्त कर सकें। मन के अज्ञात क्षेत्र की अतिरिक्त दृष्टि कहाँ विश्राम करेगी। हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ चलेंगे और हमें इससे सारी शक्ति प्राप्त करने के रूप में कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा अस्तित्व है। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, ना केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। चमत्कार जो दिव्य रूप से स्वाभाविक है, लेकिन इसे मानवीय रूप से सीखना चाहिए। विज्ञान की एक घटना। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता है। वर्तमान में ये तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। भजनहार ने गाया, हे समंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा बहा, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के नियन, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछली, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। ये चमत्कार किसी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है, भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना। आत्मा की इंद्रियां प्रेम में निवास करती हैं और वो सत्य और जीवन का प्रदर्शन करती हैं। इसलिए मसीही धर्म और इसकी व्याख्या करने वाला विज्ञान आध्यात्मिक समझ पर आधारित है और वो पदार्थ के तथाकथित नियमों का स्थान लेते हैं। आज इसराइल के पवित्र को सीमित करके और ये पूछकर यहूदियों को अपराध को दोहराने का खतरा है, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? ईश्वर क्या नहीं कर सकता। क्रिश्चियन साइंस के दिव्य सिद्धांत का पालन करें और ज्ञान, सत्य और प्रेम में निरंतरता का पालन करते हुए ईश्वर के आकर्षण का पालन करें। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्ध भाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकाथनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने में आती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।